हरे कृष्णा, दिस लेक्चर ऑन द कार्तिक मंथ महिमा गिवन एट कक्कर प्रभु जीज हाउस ऑन 10th November 2016 एट सेक्टर 23 फरीदाबाद बाय माय सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास.
राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव
गिरिवरधारी.
सभी बोल सकते हैं, सरल से शब्द है.
गिरिवरधारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
गोपी जन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यमुना तीरावन चार
यमुना
गौरांग महाप्रभु कृपा करेंगे.
हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
श्री राधा गोविंद भगवान की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, कार्तिक महा महोत्सव दीपदान महोत्सव की, हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंद हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है पुनः आज के कार्यक्रम में। बोलने के लिए समय कम और उस कम समय में अधिक समझाना प्रयास करेंगे। तो कार्तिक मास जो है ये बहुत ही सुंदर मास, जो कि 12 महीनों में से स्पेशल मास है। आप में से ऐसा कौन है जो कार्तिक के बारे में पहले से नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है? एनीबडी, कोई जो कार्तिक के बारे में आज तक कभी नहीं सुना हो? तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये, हर एक व्यक्ति कार्तिक मास के बारे में सुन रखे हैं। तो 12 महीनों में से सबसे उत्तम महीना, इस महीने में जो भी कार्य करेंगे उसका 1000 गुना फल मिलता है। कितना? 1000। आपने एक माला करी तो 1000 माला, जिन्होंने आज ताली बजाई उन लोगों को 1000 गुना ताली बजाने का फल मिला। ये कृपा है इस महीने की। कई लोग हैं जो कि ज्योतिषों के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो हैं उनसे मिलने के लिए एक बार एक व्यक्ति आया और बोला कि स्वामी जी जरा हाथ देखकर तो बताइए ना कि क्या लिखा है मेरे भविष्य में। हर एक व्यक्ति वर्तमान में जीता नहीं है, भूतकाल में जो हो चुका है उसके लिए परेशान है, और भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए चिंतित है क्या होगा और जो हो गया वो ऐसा क्यों हुआ। भक्त बनने के बाद, माला जपने के बाद भी लोग इन्हीं सब कार्यों में लगे हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि संसार के जितने भी ग्रह आदि मंडल हैं वो सभी के सब भगवान के चरणों में रहते हैं, नाखूनों में, और स्वयं भगवान जो भक्त होता है उसके जीवन में घुस जाते हैं और फिर वो उस व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं। कुछ नहीं हो सकता, कोई भी ग्रह, कोई भी मंडल, कोई किसी भक्त के ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकता, परंतु भक्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए। भक्ति में गड़बड़ है, विश्वास पूर्ण नहीं है, तो फिर तो पकड़ेंगे ना, शनिदेव पकड़ेंगे, कभी राहु पकड़ेंगे, कभी केतु पकड़ेंगे। हाँ भाई, एक ना एक तो पकड़ेगा, या तो आप भगवान को पकड़ लो या फिर संसार आपको पकड़ेगा। तो इस तरह से होता है। तो प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछने आया, हमसे भी लोग पूछते हैं कभी पेट्रोल पंप पे या CNG भराने जाएं तो प्रश्न यही होता है। हाँ, धोती कुर्ता देखकर समझता है आदमी कि ये पंडित होगा। पंडित मतलब कपड़ा, उसका कर्तव्य कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। पंडित जी के मंदिर में रहता है तो पंडित जी है, धोती कुर्ता पहने आज के जमाने में तो फिर वो पंडित है, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत में पंडित कौन है? भगवान ने गीता में कहा, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर मैंने क्या बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। लिखते हैं नाम के आगे शर्मा जी, लेकिन शर्मा जी को भगवान के कीर्तन में ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है, मस्तक पर तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती है, तो इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि जो ब्राह्मण होगा, ब्रह्मा जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म मतलब आत्मा, तीन प्रकार के शब्द हैं ये, ब्रह्म, ब्रह्म और ब्रह्मा, इससे गड़बड़ हो जाती है, कन्फ्यूजन होता है। एक है ब्रह्म, ब्रह्म मतलब इल्यूजन, वो भ से शुरू होता है, भ, भ्रम मतलब इल्यूजन, हमें मालूम ही नहीं है सामने क्या है क्या नहीं है, पेड़ के ऊपर भूत है ये भ्रम है, वो कपड़ा भी हो सकता है, ये भ्रम है। लेकिन एक है भ्रम, ब से शुरू होता है, भ्रम का मतलब है आत्मा, और परब्रह्म मतलब है परमात्मा। तो कई लोग हैं जो इस नाम का जप करते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि, पूरी संस्था बनी हुई है उनका है सो अहम, और कुछ लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, सो अहम, इस तरह से जो भगवान है सो अहम, मैं भी वही हूं, सेम एज इट इज, सो अहम। अभी किसी के घर पे गए थे कार्तिक के लिए, बहुत सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, उत्तम नगर में रहते हैं, अपने घर में ले गए, आइए आइए प्रभु जी, हर कमरे में चरण डालिए, हमारा घर शुद्ध हो जाएगा। मैंने कहा चरण डालने से शुद्ध नहीं होता है, हरि नाम लेने से शुद्ध होता है, भगवान का नाम लीजिए। हाँ वो तो हम लेते ही हैं, आइए आइए हम आपको अपने गुरुजी का फोटो दिखाते हैं। अभी कौन से गुरुजी आ गए, तो उन्होंने अपना एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया है एक कमरे में, और उसमें कई सारे फोटो लगा रखे हैं,
एक गुरुजी के पूरी पीढ़ी लगा रखी है, पुश्ते हैं, 10 पुश्ते हैं लगा रखी है गुरुजी। ये पहले गुरुजी, दूसरे, तीसरे, चौथे, अभी के वर्तमान ये गुरुजी हैं। अच्छा, क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं सोहम, जो भगवान है वही मैं भी हूं, जबकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है, ये भूल मत करना। नर ही नारायण है, बहुत चल रहा है मार्केट में, नर कभी नारायण नहीं बन सकता। नारायण जो है वो अपने को रासलीला में 16108 रूपों में विस्तारित कर सकते हैं, ये नारायण है। 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, ये नारायण है। 6 दिन की उम्र में पूतना जैसी राक्षसी का वध कर सकते हैं, ये नारायण है। हम कर सकते हैं? हमारे पीछे तो कुत्ता पड़ जाए तो फिर हम टेंशन में आ जाएंगे, तो पूतना की बात तो छोड़ो, तो फिर आप बताइए कैसे हम नारायण की बराबरी। 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए, वो भी किस पर? उल्टे हाथ के कन्नी उंगली के नाखून के ऊपर, नख ऊपर गिरिधारियो, गिरिधारी ने नाखून के ऊपर गिरी को धारण किया। हमसे बोला जाए कि जरा थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग उठा लीजिए, तो कुछ लोग 200 किलो वजन उठाते हैं ना, वो भी जोर लगा के, चेहरे के हाव भाव बिगड़ जाते हैं। इंटरनेशनल चैंपियंस जो है, 1 सेकंड के लिए धाप नीचे गिर जाता है, और फिर बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल मेडल गोज टू दिस पर्सन, इसको क्या है, अंतरराष्ट्रीय, हाँ इसको बनाया गया है व्यक्ति को इंटरनेशनल चैंपियन, 200 किलो को इसने 1 मिनट 1 सेकंड के लिए उठाया। अभी सोचिए, भगवान कृष्ण ने 7 दिन 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत उठाया, लेकिन मुख की विकृति नहीं हुई, मुख एकदम सुंदर, प्रज्वलित, स्फुरित, ऐसा मुख था जो कोई भी देखता था उसे लगता था कि मुझी को देख रहे हैं। पूरा व्रजमंडल उस पर्वत के नीचे आ गया था। अगर असली पर्वत जो था, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, अगर वैसा रहता तो 150 किलोमीटर की परिक्रमा होती, द्वापर युग में 150 किलोमीटर की परिक्रमा थी, ये घटते घटते द्वापर युग से कलयुग में अभी रह गया है कि 23 किलोमीटर की परिक्रमा है, कुछ 21 बोलते हैं, 150 किलोमीटर, सोचिए 150 किलोमीटर की परिक्रमा। तो इस तरह से भगवान ने उस पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। भागवतम कहता है जैसे कुकुर मुत्ते के पत्ते को उखाड़ लेते हैं ना बच्चे, क्या बोलते हैं, मशरूम, उसको निकाल के ऐसे ऊपर उछाल लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने उठाया। और भगवान ने जब उठाया तो उठाने के बाद में सारे ही ग्वाल बाल जो थे वो आकर के बोले, वाह कृष्णा, तुमने तो गोवर्धन को उठा लिया, हाँ तू एक काम कर, साख्य रस में भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आया है, उसमें कहते हैं जो सखा भाव में होते हैं ना उनको बड़ी चिंता रहती है कृष्ण की, तो उन्होंने चिंता थी, उन्होंने कहा कृष्ण हमने भी अपनी लाठी लगाई है, तू एक काम कर थोड़ा रेस्ट कर ले, लाला तू थोड़ा रेस्ट कर ले। लेकिन लाला ने कहा देख लो मैं हटा तो तुम्हें टेंशन हो जाए, कह रहे नहीं नहीं लाला तू चिंता मत कर, हम सबने अपनी लाठी लगा रखी है। तो लाला ने थोड़ी सी उंगली को टेढ़ा किया तो चर मर आवाजें आई और सबकी लाठी टूट गई, सब चिल्लाए लाला पकड़ 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 लाला पकड़। तो तुरंत कृष्ण ने वापस उंगली सीधी की, बोले अभी क्या प्लान है? बोले अभी यह है कि तू ही पकड़ के रख। तो फिर बाद में भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन को नीचे रखा और जब बाहर आए, तो आने के बाद में इसी कार्तिक मास में ये शुभ लीलाएं हुई हैं सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मास है। तो बाहर आकर के सबने सोचा ये कौन है? भगवान है। आप देखिए इसी गोवर्धन लीला के बाद में भागवतम में अद्भुत कृष्ण नाम का एक अध्याय आता है, अद्भुत कृष्ण की लीलाएं, उसमें सभी लीलाओं का वर्णन है, पूतनावध, तृणावृत वध। तो भगवान से जब आकर के, भगवान के पिता नंद बाबा से आके सभी वृंदावन वासी कहने लगे, वाह बाबा तुम्हारा पुत्र तो सचमुच कोई देवता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे गर्ग मुनि ने बताया है, गर्गाचार्य जिन्होंने नामकरण किया था, आपका पुत्र कौन है? नारायण समोगुणी। जब गर्गाचार्य जी आए थे तो क्या हुआ, उनको नामकरण के लिए बुलाया गया, और महावन में एक स्थान पड़ता है जहां पर गर्गाचार्य ने बैठ करके गौशाला में नामकरण किया। तो यशोदा और रोहिणी, रोहिणी बलराम की माता है और यशोदा कृष्ण की माता है, दोनों ने सोचा कि एक काम करते हैं, ये गर्गाचार्य को इतनी दूर से मथुरा से बुलाया है, ये सही मायने में सच्चा आचार्य है भी कि नहीं, टेस्ट तो कर ले, माताओं में बहुत होता है ना, टेस्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही क्या किया, कृष्ण को रोहिणी ने ले लिया और जो बलराम थे उनको किसने ले लिया, यशोदा मैया ने, और कहा कि देखते हैं ये बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। तो पहले यशोदा मैया ने कहा इसका नाम रखिए, और जैसे ही आगे बढ़ाया तो गर्गाचार्य देखते ही कहते हैं ये जो बालक है आपकी गोदी में यशोदा मैया, रोहिणी पुत्र, हाँ वो बोले जो आपकी गोदी में बेटा है, पुत्र है, रोहिणी नंदन, रोहिणी पुत्र, ये बल में बलशाली होगा और सबको अपना आनंद प्रदान करेगा। तो राम है ते इति राम, जो आनंद प्रदान करते हैं उसे राम कहते हैं, और ये बलशाली होगा इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलो बलराम भगवान की जय। हाँ तो बलराम भगवान का नाम पड़ा बलराम। अभी रोहिणी ने कहा अच्छा तो अभी इसका भी नाम बताइए। अभी भगवान का नामकरण हो रहा है जबकि भगवान का नाम तो सनातन है, कभी नाम रखा जाता है वो तो शुरू से वैसे ही है। तो गर्गा मुनि ने जैसे ही उनको गोदी में लिया तो कहते हैं उनकी तटस्था समाधि लग गई, तटस्था समाधि, देखते ही टेंशन में आ गए कि ये क्या है। हाँ, जिस नारायण की मैं पूजा करता हूं, चतुर्भुज रूप लेके वैकुंठ में रहता है, हर एक आदमी उसके जाने के लिए कार्तिक में सुबह सुबह स्नान कर रहा है कि मैं वैकुंठ जाऊं, जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाऊं, वो विष्णु मेरी गोदी में। घबरा गए बुरी तरह से और उनकी पलकें भी झपकना बंद हो गई, तटस्था समाधि लग गई और मुंह से क्या निकला, ना। और फिर मुंह खुला रह गया, क्या बोले, ना, क्या बोले, ना, बस। तो अभी तो सभी लोग सोचने लग गए इन्होंने ना के आगे कुछ बोला ही नहीं, अरे ऐसी क्या बम रख दिया क्या हमने, एटम बम, ये बोले ही नहीं कुछ, न्यूक्लियर बम देख लिया क्या। तो ऐसे गोदी में उठाकर ना बोलकर तटस्थ समाधि लग गई। तो मैया बोली लगता है लाला को नजर लगा रहा है, लाला को नजर लगा रहा है, मुंह खोलकर खा जाएगा क्या हमारे लाला को, जल्दी से नामकरण कर इसका। तो वो बोल नहीं पाए, तो उनकी आपस में चर्चा चल रही है। तो आचार्यगण बताते हैं कृष्ण का और गर्गा ऋषि का क्या हो रहा है, वार्तालाप, संवाद। एक होता है विवाद जो हम सब करते हैं, हाँ। विवाद मतलब जब एक मत पर किसी का मत नहीं होता, वो विवाद है। हारमोनियम बजाए नहीं बजाए कीर्तन में, नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ, ये विवाद है। और संवाद क्या है, जब कृष्ण गीता बोलते हैं और अर्जुन उसको सुनते हैं और कहते हैं यस सर यस सर यस सर, वो है संवाद, जहां पर मत एक होता है। तो हम सब अभी संवाद कर रहे हैं क्योंकि हम सब अभी कृष्ण को चाहते हैं कि हम उसके बारे में सुने, कृष्ण कथा को श्रवण करें, इसलिए संवाद। और अभी यहाँ पर किसी मुस्लिम को बिठाएं, क्रिश्चियन को बिठाएं, गुरु नानक के पुजारी को बिठाएं और फिर हमें भी बिठाएं और फिर कौन भगवान है इस पर चर्चा करें, तो वो क्या बन जाएगा, विवाद बन जाएगा। तो संवाद शुरू हो गया दोनों में, गर्गा ऋषि में और कृष्ण में। क्या संवाद हो रहा है, वो कह रहे हैं नारायण, बोले नहीं है लेकिन अभी ना है, लेकिन अंदर से बोल रहे हैं मन से नारायण, लेकिन नारायण कह रहे हैं बोलना मत कि मैं भगवान हूं, अगर तुमने बोल दिया कि मैं भगवान हूं तो ये लोग उठाकर मुझे कहां रख देंगे, ऑल्टर में रख देंगे, एक बड़ा सा बल्ब लगा देंगे 100 वाट का, 50 वाट का, 10 वाट का, हाँ, और फिर चिरौंजी दाना देंगे खाने के लिए। तो मैं ना ऑल्टर वाला भगवान नहीं बनना चाहता हूं, मैं असली साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस को प्राप्त करने के लिए मैंने अवतार लिया है अपना, स्वयं उतर कर आया हूं, ये मेरा कोई अवतार नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं विष्णु से कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान उतर कर आए हैं, क्योंकि वो यहां पर भगवान नहीं कहलाना चाहते। और गोलोक धाम में भी जो जाना चाहते हैं ना, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो गोलोक धाम जाना चाहते हैं, भूल कर भी कृष्ण को भगवान मत मानिएगा, भूल कर भी कृष्ण भगवान नहीं है। 5 रस प्रदान किए हैं, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, कोई भी चुन लो एक, कोई भी चुन सकते हो, लेकिन कृष्ण को अगर भगवान माना ना तो फिर गड़बड़ है। भगवान से तो हम वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हम उन लोगों से व्यवहार करते हैं जो कभी कभी हमारे घर आते हैं, है ना, उनसे बड़ा डर डर के रहते हैं, बच बच के रहते हैं, ना उनसे कुछ बात करते हैं, ना अपने दिल की बताते हैं, बस उनका सम्मान करते हैं, है ना, ये बड़े सीनियर लोग हैं आए हैं, उनको दूर से प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं, वो भगवान है। लेकिन भगवान कहते हैं भगवान के लिए तो मैंने विष्णु जी को छोड़ रखा है, जो बनो भगवान, मैं तो बना हूं प्रेम के लिए, किसके लिए बना हूं, प्रेम के लिए। तो भगवान को प्राप्त करना है, ये भक्ति है, ये है दास बनना, ये है भगवान की सेवा करना। तो हम लोग सोचते हैं दास बनने का मतलब सबको दास बनना है, गोपियां भी भगवान की दास है, है ना, भगवान की जो सेवा करे वो उनका दास, लेकिन भाव उनका प्रेम है। बड़ी गुहितम बात है, आसानी से सरल से समझ में नहीं आती है, लेकिन उत्तम रस है गोपियों का रस, वैसा हमको भाव रखना है कि मन में कोई अभिलाषा नहीं है, गांव वाले गालियां दें फिर भी हम जाएंगे कृष्ण भक्ति करने, हाथ में माला लेके चलेंगे मोहल्ले वाले बोलेंगे देखो साधु चला है बनने, 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। हाँ, तो आपको भी बोलना चाहिए हमारी चली तो तुम्हारी तो वहीं खड़ी है। तो फिर इस तरह से साधु बनने में डरते हैं तो कैसे कृष्ण को प्रेम करेंगे। उनके बच्चे रो रहे हैं, सास ससुर चिल्ला रहे हैं, लेकिन गोपियां निकल कर चली जाती हैं और कृष्ण से कहती हैं हमें एक्सेप्ट करिए, और कृष्ण उसके बाद भी उनको क्या करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम सब तो मेरा नाम बदनाम करवा दोगी, जाओ अपने अपने घरों में। लेकिन वो कहती हैं चाहे बदनामी हो चाहे नर्क जाना पड़े लेकिन कृष्ण आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता, ये है प्रेम। हरिदास ठाकुर भगवान के बहुत बड़े भक्त, रिष्ट भक्त हुए हैं, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, मुसलमान परिवार में जन्म हुआ, लेकिन वो जब हरिनाम लेते थे तो लोगों ने द्वेष में आकर उनको 22 बाजारों में मारा। आपका सेक्टर 22 है ना, वो नहीं, सेक्टर 22, 23, 21, 55, 8, 7, YMCA, बाटा चौक, सब पे मारे आपको, और बोले छोड़ता है कि नहीं अपना बीड़ बैग, तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे? बिल्कुल, बोले प्रभु जी पहले मार्केट में बस बोलेगा मारेंगे तो छोड़ देंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, खंड खंड जाए देही याए यदि प्राण तबो भी वदने ना छोड़े हरि नाम, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो फिर भी मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। जन्म कहां हुआ है, मुसलमान परिवार। लो जी आपका जन्म हुआ है हिंदुस्तान में, हिंदू घरों में, और आपको हरि नाम लेने में डर लगता है, 16 माला पूरी करने में पूरा दिन निकल जाता है, पूरी जान निकल जाती है, अरे प्रभु जी कैसे करते हैं हम ही जानते हैं बस। तो इसीलिए है क्योंकि प्रेम नहीं है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी से जब वो व्यक्ति दिखाने आया अपना हाथ तो प्रभुपाद जी ने देखा और कहा इसमें तो घबरा गया, अगर कोई ऐसे हाथ देकर तुत तुत कर दे तो क्या होगा, बस आधा 50% जान चली जाएगी। देखते ही बोला तुम्हारे हाथ में तो जन्म है, पुनर्जन्म है। कहा पुनर्जन्म, और क्या है स्वामी जी, तुम्हारे हाथ में मृत्यु है, मृत्यु मार्केश लगा हुआ है तुमको, मरने वाले हो। हाँ और क्या है, और कहा तुम्हारे हाथ में क्या है, बीमारियां हैं, बीमारियां भी हैं, और क्या है, और कहा तुम्हारे हाथ में बुढ़ापा भी है। ओ घबरा गया, रोने लगा, स्वामी जी ये सब क्या बता दिया आपने। स्वामी जी ने कहा नया थोड़ी बताया, सबके हाथ में होता है, जन्म सबका होता है, मृत्यु सबकी होती है, अटल है मृत्यु, ऐसा कोई नहीं जो कहे मेरी मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मा जी का भी मरना होता है, जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा भी आएगा, चाहे कितना बोटोक्स इंजेक्शन लगवाए माता अपनी उम्र को छुपाएं। जैसे एक माता जी थी, वो जब भी मिलती थी हर जगह, वो अपने पार्टी में तो अपनी बेटी को भी लाती थी, बेटी जब थी 10 साल की और माता जी थी तकरीबन 30 साल की, तो अपने को 25 साल का ही बताती थी वो, माता जी आपकी उम्र कितनी हो गई, कहा मैं 25 और लड़की 10 ईयर्स 10 साल की है, मैं 25। और थोड़े दिनों बाद मिले, लड़की तो बढ़ रही है 12-15 साल की हो गई, माता जी से पूछा माता जी बेटी कितने साल की हो गई, 15, और आप, मैं 25। फिर आगे पूछा तीसरे साल फंक्शन में कहीं मिले 10-15 साल बाद, बेटी हो गई है 20 साल की 5 साल बाद, और उसे पूछा माता जी बेटी की उम्र 20 हो गई आपकी कितनी हुई है, मैं तो वही 25। तो भक्त बोले माता जी एक साल का तो गैप रख लेना। पता चला दोनों बराबर में कंपटीशन चल रहा है ना बेटी। तो ये है उम्र, उम्र बोलने से कम नहीं होगी, वो तो आएगी, अटल सत्य है। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर इसे बदलना चाहते हो तो क्या करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को बदलने का एक ही तरीका है, क्या, भगवान के नामों का कीर्तन। कीर्तन में जोर जोर से जो व्यक्ति ताली बजाता है उसके हाथ की रेखाएं वो स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम।
तो हम जिन प्रभु जी के घर गए थे उत्तम नगर में, उन्होंने अपने घर में गुरु परंपरा लगा रखी थी, तो उनसे जब पूछा प्रभु जी ये गुरु जी क्या सिखाते हैं, आपको क्या मंत्र दिया है, ना 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 गुरु दीक्षा मिली है, बड़ा ही घुयतम मंत्र मिला है। मैंने तो फिर ऑप्शन देना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई ना कोई तो आएगा फंसेगा ये, तो मैंने पूछा अहम ब्रह्मस्मि, ना 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 मैंने कहा ओम नमः शिवाय, ना 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 ना, हरे कृष्णा, ना ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं, बेकार है वो तो। तो फिर कौन सा, मैंने कहा सोहम, हाँ वही वही। मैंने कहा कि अच्छा फंस गए सोहम। मैंने पूछा कि सोहम के ऊपर, फिर उन्हें एक कथा सुनाई छोटी सी, छोटी छोटी कथा मैंने इकट्ठी करके रखी है, जो भी मिलता है वैसा मटेरियल उसको दे देते हैं। तो सोहम वाला व्यक्ति मिला तो हमने कहा, एक भक्त थे बॉम्बे में, वो हमेशा क्या बोलते थे, सोहम। तो उनका मित्र मिला तो उन्होंने कहा, देखो हम भगवान के समान नहीं हो सकते हैं, हम तो भगवान के दास हैं, जीवेरे स्वरूप होए नितेर कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास हैं। तो एक काम करो, तुम दास बनो, ये सोहम छोड़ दो। कहा नहीं नहीं, गुरु जी को वादा किया है, मरते दम तक सोहम कहूंगा, छोड़ोगे नहीं? कहा नहीं। अच्छा जोड़ तो सकते हो, जोड़ सकते हो? कहा हाँ जोड़ सकता हूं। तो एक काम करो, इसमें दास जोड़ दो। तो उसने कहा ठीक है। अभी वो जब करने लगा, दासोहम, मैं दास हूं, भगवान का दास हूं। गुरु जी ने एक दिन देखा मंदिर में बैठ के दासोहम कर रहा है। गुरु जी ने कहा, ये क्या तुम बोल रहे हो, दासोहम, दास नहीं है, हम भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, और भगवान में लीन हो जाएंगे एक दिन जाकर के। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो गुरु जी क्या करूं, दास हटाओ। का हटा नहीं सकता हूं, दोस्त ने वादा दिया है, उसने कहा मैं मर जाऊंगा अगर तुमने दास हटाया, तो मर जाएगा। अच्छा ठीक है, हटा नहीं सकते, जोड़ तो सकते हो? हाँ जोड़ लूंगा। क्या जोड़ना है? बोले इसमें सो जोड़ दो, सो दासो अहम, सो दासो अहम, सो दासो अहम, मैं वैसा ही हूं जैसा भगवान। अब दोस्त ने सुनो, कहा अरे तो फिर उसी पटरी पे आ गया। कहा देख एक काम कर, देख भाई इसको छोड़ दे, सो हम हटा दे, दासो हम ठीक था। नहीं नहीं नहीं, हटा नहीं सकता हूं, गुरु जी ने वादा किया है। तो बोले क्या किया? अरे हटा नहीं सकते हो, जोड़ तो सकते हो, और जोड़ दो। तो क्या जोड़ दिया? दास जोड़ दिया। अभी वो बोलने लगा दासो दासो अहम, दासो दासो हम, जैसा चेतन महाप्रभु ने कहा, गोपेर भरतयोर पद कमलयोर दासो 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 अस्मी, मैं दासों के दास का दास हूं, यही चीज उसको सिखा दी। और बोलते बोलते, दास की भावना को रखते रखते उसका हृदय पिघल गया, और उसने उस दासो हम सो हम को छोड़कर ये दासो हम की संस्था ज्वाइन कर ली और हरे कृष्ण मंत्र जपने लगा। तो ये बहुत जरूरी है समझना। आप देखिए भगवत गीता में, आज तक शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा, पुराने प्रवचनों में हमने भी नहीं बताया होगा, आज बता रहे हैं, 12वें अध्याय का 7वां श्लोक, हाँ 12वें अध्याय का 7वां श्लोक, इसमें भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई जानते क्या कहा है 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में? पुराने डिवोटीज कोई, सीनियर डिवोटी कोई, समुद्र के पास रहने वाले सीनियर डिवोटी कोई नहीं है? तो इसमें गीता पढ़ना बहुत जरूरी है, इसे भगवत गीता कहते हैं, जिसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले 45 मिनट में सुनाया था। इसमें भगवान कहते हैं 7वें 12वें अध्याय के 7वां श्लोक, हमेशा इसको रट लीजिएगा, याद करिएगा, पढ़िएगा। तेषाम अहम समुद्धाता मृत्यु संसार सागरात भवामी नाचिराता पार्थ मई आवेशित चेतसाम। तो भगवान ने कहा तेषाम अहम समुद्धाता मृत्यु संसार सागरात भवामी नाचिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम। क्या कहा इसका मतलब, वो भी बता देते हैं, आपने पढ़ा ही नहीं तो कैसे पता होगा। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, बोलिए सारे साथ में पीछे, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, पहले तो अर्पित कर देना है, उसके बाद दूसरी पार्ट बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, तथा अविचल अविचलित भाव से, पहले तो दे दिया उसके बाद अविचलित, दान दे दिया उसके बाद अविचलित रहना है। अभी 500,000 के नोट चल भी नहीं रहे, फिर भी लोग देने में घबरा रहे हैं, प्रभु जी दे दे, क्या पता बाद में एक दो हफ्ते बाद चेंज हो जाए, देखो आप कुछ बताओ, कुछ है आप सोचो बताओ, थोड़ा भविष्य व्यक्ता हो आप लगाओ। नहीं नहीं, भविष्य कुछ कह रहा है कि सारा कुछ भगवान को दे दो, यहाँ लिखा है मुझमें अर्पित करके सब दे दो, 500,000 के नोट मंदिर में चल जाएंगे 31 दिसंबर तक। अविचलित भाव से, साथ में देने के बाद अविचलित भी रहना है, लेकिन लोग देने के बाद विचलित हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने रात्रि में, रात को 8 बजे हमको दान दिया 51,000 रुपया, देने के बाद में हमने उसको प्रसाद दिया, वो चला गया, दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर आया, बोला प्रभु जी मैंने दिया किसी को पता ही नहीं चला। मैं क्या मतलब, कह रहे आप संडे लव फीस्ट में मेरा नाम अनाउंस करना। मैंने कहा उससे क्या मिलेगा, कहा पता तो चलना चाहिए मैंने 51,000 का दान दिया। मैं कहा तुमने किसके लिए दिया था, पब्लिक के लिए भगवान के लिए। कह रहे भगवान उसको तो पता चल गया। कह रहे नहीं नहीं फिर भी पता तो चलना चाहिए ना। तो ये है अविचलित है वो, उसको पूरे हफ्ते नींद नहीं आई होगी संडे लव फिश में कब मेरा नाम अनाउंस होगा। मैंने भी तब अनाउंस किया जब महाप्रसाद गोविंद हो चुका था, तो फायदा नहीं हुआ। तो अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, विचलित हुए बिगर मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कराने वाला हूं मैं, शीघ्र उद्धार कराने वाला हूं। समुद्धाता भगवान ने शब्द बोला सम। तो श्रील प्रभुपाद जी इतना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का रसिक भक्त होना वो इस श्लोक को जरूर पढ़ेगा, जरूर सुनेगा। इसमें भगवान कह रहे हैं भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वैकुंठ में जाने के लिए आप प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक में आत्मा को लो जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग की साधना भी नहीं करनी पड़ती है। लगे पड़े इसकी अष्टांग योग की साधना नहीं करनी है वैकुंठ लोक जाने के लिए, इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। कई लोग पूछते हैं प्रभु जी हमने पूरा जीवन भक्ति करी लेकिन एंड में हम कोमा में चले गए फिर क्या होगा, तो भगवान ने यहां लिख दिया प्रभुपाद जी ने, उस व्यक्ति को अंतकाल के लिए वेट नहीं करना। यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा, आप सिर्फ भगवान का नाम जप करिए, सब कुछ भगवान को समर्पित करिए, मन को अविचलित करिए, स्थिर करके भगवान का ध्यान करिए। और भगवान कह रहे हैं कि अंत समय में तुम स्मरण करो ना करो, इसका भार स्वयं मैं अपने ऊपर लेता हूं, मैं उसका उद्धार अवश्य करूंगा। क्या करेंगे, अवश्य उद्धार करेंगे। हाँ ये लिखा है इसमें, नायमी परम स्थानम चिरादिगतम विना गरुण स्कंदम आरोप्य यथेच्छामानिवारितः। बालक अपने माता पिता द्वारा सदैव रक्षित होता है, उसी प्रकार इस भक्ति योग में लगे हुए व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है कि वो किसी और की पूजा करे, जाए वो ज्योतिषी के पास, जाए वो किसी हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाए मंगलवार को, जाए वो सोमवार को हाँ भगवान को शिव को जल चढ़ाए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी भगवान की पूजा करने का, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भागवत धर्म कहता है कि बस एक वेव कृष्ण आर सब भृत्य, बस एक कृष्ण भगवान है। लोग परेशान है हिंदुओं में इतने भगवान क्यों, हिंदुओं में भगवान नहीं है, हिंदुओं के पास में मस्तिष्क को इस्तेमाल करने की शक्ति नहीं है, भगवान एक ही है, कौन, कृष्ण, जो वादा कर रहे हैं 12वें अध्याय में 7वें श्लोक में कि मैं उसका उद्धार करूंगा, और सत्य पे सत्ता भी मारते हैं। सत्य पे सत्ता मतलब 7वें अध्याय का 7वां श्लोक क्या बोलते हैं उसमें भगवान, मत पर तरम ना अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। अर्जुन को भगवान ने बोला सुन लेंगे, महाभारत बीआर चोपड़ा को चाट चाट के देखा, लाइट चली जाती थी फिर भी देखा, उसके बाद भी मत परतरम अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय को समझे नहीं लोग। जन्माष्टमी भी बनाते हैं, शिवरात्रि भी बनाते हैं, हनुमान जयंती भी बनाते हैं, रामनवमी भी बनाते हैं, और तो और दुर्गाष्टमी भी बनाते हैं भक्त बनने के बाद, स्वामी प्रभु जी दीक्षा लेने के बाद में भी, एक भक्त मिले थे दीक्षा लेने के बाद में, ब्राह्मण दीक्षा भी लिए हैं, मैंने उनसे पूछा कहां जा रहे हैं, कह रहे हैं बस अपने ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, उनको दिखाने के बाद में फिर कहां जाएंगे, हम जाएंगे काली पूजा, आजकल पंडाल लगे हुए ना दशहरे से पहले, वो देखने जाएंगे बच्चों को घुमाने के लिए। मैं कहा वृंदावन समाप्त हो गया जो बच्चों को घुमाने के लिए काली पूजा बची है, तो आप सोचिए क्या स्थिति है एक भक्त की, क्यों होता है, क्यों व्यक्ति इधर चला जाता है, मतलब हरे कृष्ण जब भी कर रहा है और उसे ज्योतिष के ऊपर भी भरोसा है, इसका मतलब उसे कृष्ण पे रंच मात्र भी भरोसा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवद गीता का 12वें अध्याय का 7वां श्लोक कह रहा है। अगर आपको भगवान पर भरोसा रखना है तो बाकी सबको छोड़ दो, बस एक भगवान, एक भगवान और गुरुदेव, बस और कुछ नहीं। ये जो होता है ना घोड़े के दोनों तरफ आंख पे पट्टी लगाई जाती है, ऐसे जब कोई कृष्ण की तरफ भागता है तब कृष्ण उसके ऊपर कृपा करते हैं, ऐसे नहीं हर एक के ऊपर कृपा करते हैं। तो यहां पर कहा है नारायणी नाम का एक ग्रंथ है उसमें भी इसकी पुष्टि करी गई है। कहते हैं यावे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायण आश्रय। किसका आश्रय लेना चाहिए? गौर कृपा प्रभु का तो आश्रय लेना ही चाहिए, लेकिन साथ में उनके आश्रय के अलावा भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए वे ना तो सकाम कर्म की विधियों में उलझे, सकाम कर्म की विधियों में उलझना भी नहीं है, ना ही कोरे चिंतन के ज्ञान के अनुशीलन करे, खाली मेडिटेशन कर रहे हैं सोम सोम सोम। मेडिटेशन किसका कर रहे हैं जी? भगवान कौन है? भगवान एक निराकार है, भगवान एक शक्ति है, भगवान के अंग नहीं है, अंग विहीन है, जो पूर्ण नहीं है वो कैसे भगवान हो गया? ईशो उपनिषद कहती है पूर्ण विदम, भगवान पूर्ण है, और अगर वो पूर्ण है तो क्या उनके अंग नहीं है? कंप्लीट मैन रेमंड्स का है, कंप्लीट मैन मतलब उसके पास सब कुछ है, वो ऐसा नहीं है उसके पास हाथ पैर नहीं है तो फॉर्म लेस हो गया, और किसी चीज में लेस हो गया तो वो भगवान कैसे हो गया? भगवान तो वो है जिसके पास सब कुछ है। शिव जी के पास सब कुछ नहीं है? शिव जी के ऊपर जब भस्मासुर ने आक्रमण किया तो दौड़े दौड़े शिव जी गए कृष्ण भगवान के पास में। तो इस तरह से सब कुछ नहीं है उनके पास में। ब्रह्मा जी के ऊपर जब हिरण्यकश्यपु ने आक्रमण किया तो दौड़े दौड़े गए कृष्ण भगवान के पास में, सब कुछ नहीं है। गोपियों के पास सब कुछ है। लक्ष्मी जी को जब प्रेम चाहिए था गोपियों जैसा तो दौड़कर बिल्लव वन में जाकर, बेल वन जिसे आज कहते हैं या फिर जहांगीरपुरी कहते हैं, वहां जाकर उन्होंने तपस्या करी और आज तक तपस्या कर रही है, लेकिन उनको कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो लक्ष्मी जी के पास भी नहीं है, गणेश जी के पास भी नहीं है, क्योंकि गणेश जी खुद ब्रह्म संहिता में वर्णन कर रहे हैं कि मेरे गुरु तो नरसिंह भगवान है, क्योंकि नरसिंह भगवान विघ्नों को हरने वाले हैं। तो गणेश जी क्या करेंगे? गणेश जी विघ्न हरते हैं, लेकिन उसके हरते हैं जो कृष्ण शरणागत नहीं है, लेकिन जो कृष्ण शरणागत है उसको तो आध्यात्मिक विघ्न हरने की शक्ति चाहिए। इसीलिए इस्कॉन के हर केंद्रों में आपको नरसिंह भगवान मिले, गणेश जी नहीं है। गणेश जी तो खाली भौतिक विघ्न हर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विघ्न, माला में नींद आना, माला में मन ना लगना, शास्त्र पढ़ने में नींद आना, भक्तों से द्वेष हो जाना, भक्ति छूट जाना और ज्योतिषों के पास चले जाना, इसका मतलब अभी नरसिंह भगवान की कृपा नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर। छोड़ दीजिए आज ही जो भी कुछ करते हैं, तभी आप सोचिए एक भगवान कृष्ण की शरण लेने में बड़ा मजा है, इंडिपेंडेंसी फील होती है, फसाओ खत्म हो जाता है, उलझने समाप्त हो जाती हैं, करें क्या ना करें बस करो क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस नारायणी शास्त्र में रह रहे हैं जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वो उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों से प्राप्त नहीं होते हैं। कौन सी विधियां बताइए जरा ध्यान से सुनिएगा। चिंतन मतलब मेडिटेशन, इससे प्राप्त नहीं होगी। अनुष्ठानों से, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, ओम अग्नि भूतेषु स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बाद में बीड़ी जलाते हैं, अनुष्ठानों से प्राप्त नहीं होगा, बड़े बड़े यज्ञों से प्राप्त नहीं होगा, दान पुण्यों से भी प्राप्त नहीं होगा। दान दे देते हैं, पूरा जीवन पाप किया, बाद में गठरी बना के दान दे दिया, बोले क्या हुआ? बोले हमने अपने पाप समाप्त कर दिए। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, पाप अगर सात किए और पुण्य अगर चार किए तो ऐसा नहीं होता है, 7-4=3। अध्यात्म में मैथमेटिक्स नहीं चलता, गणित नहीं चलता है, अध्यात्म में तो पाप, सात पापों का सात का भुगतान और चार पुण्यों का चार का भुगतान। तो इसीलिए ना पाप करिए ना पुण्य करिए, क्या करिए? भक्ति करिए, भगवान को सब कुछ समर्पित कर दीजिए। जो सात पुण्यों से चार पुण्यों से काटना चाहता है अपने पापों को कभी नहीं काट सकता। एक व्यक्ति ने पूछा था, एक बड़े फिल्म स्टार है, हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम पब्लिकली बोल रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर में होता तो बोल लेते हैं, फिल्म स्टार है एक बहुत बड़े, उनके बहुत सारे केस चल रहे हैं, आप अपने आप समझ जाएंगे, शक्तिशाली भी हैं बहुत सारे, शादी भी नहीं किए हैं अभी तक, रोड एक्सीडेंट कर देते हैं, कभी जानवर को मार देते हैं, तो इतने बड़े वो फिल्म स्टार हैं। कोई व्यक्ति पूछ रहा था कि उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है, उस सोसाइटी के द्वारा वो बड़ा गरीबों की और समाज की मदद कर रहे हैं, वो दान देते हैं अपना, अपना जो कमाई है उसका 50% दान देते हैं, तो प्रभु जी इतना खराब किया और अभी दान दिया तो न्यूट्रल हो गया ना, इक्वल, तो गलत है सोचना ये, कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो उन्होंने बोला फिर इनको क्या योनि मिलेगी। मैं कहा देखिए मैं भगवान तो नहीं हूं, मैं बता नहीं सकता हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी ने एडमिशन लिया है कि कौन सी कंपनी में कैंपस रिक्रूटमेंट होगा इसका, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूं कि अगर इसने ध्यानपूर्वक पढ़ाई करी और 70% से ऊपर इसके आए तो कैंपस में ये किसी सॉफ्टवेयर इंफोसिस कंपनी में जॉब ले सकता है। ये हम आइडिया लगाते हैं, तो आइडिया से मैं बता सकता हूं शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि इन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, तो किसी पुण्यवान व्यक्ति रहीस व्यक्ति के घर में श्रीमदाम शुचिनाम गृहाम योगाम भ्रष्ट बजाए थे, किसी पैसे वाले के घर में इनका जन्म हो जाएगा। कहा अच्छा, लेकिन शरीर कौन सा मिलेगा। मैंने कहा देखिए क्योंकि ये स्त्री काम ही रहे हैं, इनको पुरुष को स्त्रियां बहुत पसंद है, तो ये जरूर किसी स्त्री के पास के कुत्ते बन सकते हैं जो कि गाड़ियों में घूमेंगे, एसी में रहेंगे, सारी सुविधाएं रहेंगी, लेकिन उस योनि में भोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि शरीर परिवर्तन हो जाएगा। हवाई जहाज उड़ा रहे हैं अभी तो कहीं भी उड़ा सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज से उतरकर जब छोटा ऑटो मिल जाएगा या कार मिल जाएगी तब उड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही मनुष्य शरीर अगर चला गया और गधा घोड़ा गाय की योनि मिल गई तो हरि नाम नहीं ले पाएंगे, सत्संग में नहीं बैठ पाएंगे, प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वृंदावन वास नहीं कर पाएंगे और कार्तिक दीपदान भी नहीं कर पाएंगे। ये तभी तक है मनुष्य शरीर जब तक प्राप्त है। अभी हवाई जहाज का शरीर है, उड़ लो जितना उड़ना है, जहां जहां जाना है। एक बार ये छूट गया उसके बाद ऑटो गाड़ी मिलने वाली है और फिर वो मिलेगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार से योनियां शायद भगवान डिसाइड करते होंगे, मैंने ऐसा सोचा निर्णय लगाया, बाकी तो भगवान के हाथ में है सब कुछ। तो ये सोचने वाली बात है कि हम करें तो करें क्या, सब कुछ छोड़ दीजिए, बस एक भगवान कृष्ण की शरण में आ जाइए। तो ये जो दीप दान है, इसे दीप को दान बड़ा ही प्रमुख माना जाता है इस कार्तिक मास में। कहते हैं दिया दिया, क्या दिया, दिया दिया, क्या दिया, बोलिए बोलिए सब लोग, दिया दिया, क्या दिया पूरे मास में हमने, दिया दिया। तो दिया दिया मत करिए, जिया भी दिया, क्या बोलिए, दिया तो दिया, बोलिए बोलिए साथ में, दिया तो दिया, जिया भी दिया, किसको दिया, कृष्ण को दिया, दिया नहीं कहां दिया। अगर उसको दे दिया तो फिर सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, फिर टेंशन नहीं रहता है। प्रभु जी चले जा रहे हैं, पूरी टेंशन में कार चला रहे हैं, हट 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 मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, टेंशन फ्री, क्या होगा नौकरी से निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं ठाकुर जी की प्लानिंग होगी। हर प्लानिंग में भगवान का हाथ देख सके और उसने अपना जिया भगवान को दिया, जैसे राधा रानी ने अपना जिया किसको दिया, कृष्ण को दिया। कृष्ण से मिलना चाहती हैं और कृष्ण उनसे मिलना चाहते हैं तो सारा अरेंजमेंट करते हैं कृष्ण की, बस कैसे भी मिल जाऊं। कार्तिक मास की एक कथा आती है, उसे सुनाकर हम अंत करेंगे कि कार्तिक मास में एक बार राधा रानी स्वयं चल करके आती हैं कहां, नंदगांव में। जब नंदगांव में आती हैं तो उनका बड़े इच्छा थी कि मैं क्या करूं, कृष्ण के साथ में रहूं, लेकिन क्योंकि अपने ससुराल से आई है, ससुराल कहां है राधा रानी की बता सकते हैं, कहाँ है, 0/0 यावट, यावट एक स्थान है वृंदावन में पास में, वहां उनकी ससुराल है और वहां भी एक मंदिर भी है जहां उनके पति देव के रूप में जिन्होंने लीला करी भगवान कृष्ण के अंश अभिमन्यु, ये अर्जुन नहीं है, अर्जुन वाले अभिमन्यु नहीं है, ये अभिमन्यु नाम था कृष्ण के जो अवतार है जो राधा रानी के पति के रूप में द्वापर युग में लीला की है। और उनकी सास और ननद का नाम है जटिला और कुटिला, बड़ी जटिल और कुटिल है। तो राधा रानी को भेजती नहीं थी नंदगांव, लेकिन एक बार राधा रानी ने कहा मुझे नंदगांव जाना है और सभी भक्तों के साथ मिलकर के गई, क्योंकि राधा रानी के हाथ में एक बड़ा ही पावर है, क्या, प्रसाद कुकिंग, क्या है, प्रसाद कुकिंग। इसीलिए हमारे घरों के अंदर जो कुकिंग होती है उस किचन को बोलते हैं राधा सेवा, क्या बोलते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं हम लोग। और राधा रानी वहां पर चेक करती है जो कुकिंग कर रहे हैं इनका मन कृष्ण में है या नहीं, इन्होंने अपना जिया कृष्ण को दिया कि नहीं दिया, चेक करती है आकर के। अगर आपने कृष्ण के लिए कुकिंग नहीं करी तो कृष्ण उसे स्वीकार नहीं करेंगे, 56 भोग भी दे दोगे तो छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि प्रेम से भगवान एक्सेप्ट करते हैं, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही बस सार है, प्रेम से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है, प्रेम चाहिए भगवान को। तो जब राधा सेवा करें, किचन में कुकिंग करें माताएं विशेषकर, तो कृष्ण चिंतन होना चाहिए, कृष्ण के लिए बन रहा है, ये राधा रानी की विशेषता है। एक बार दुर्भाषा ऋषि आ गए थे वृंदावन में, उन्होंने कहा कल एकादशी है, कल भी एकादशी है, एकादशी के बाद जब मुझे पारण करना होगा द्वादशी को तो भोजन चाहिए और मैं तो ऐसा हूं जो कि वस्त्र भी नहीं धारण करता, प्रसाद कहां से लाऊंगा। तो उन्होंने वृंदावन में नाम सुना था राधा रानी का, तो उन्होंने कहा राधा रानी यहां पर वृषभानु दुलारी हैं, वो बहुत राजा की पुत्री हैं, वो क्या करेंगी, प्रसाद बनाएंगी। उन्होंने प्रसाद बनाया सभी गोपियों ने, और यमुना नदी के किनारे आकर खड़ी हो गई और कहा कि दुर्वासा ऋषि ने कहा है कि 56 भोग बना के लाओ, तो आज ऋषि मुर के लिए, भक्त के लिए क्या बना लाई हूं, 56 भोग। लेकिन लगाने जाऊं कैसे, यमुना नदी में कोई नाविक नहीं है, बोट नहीं है, कैसे जाऊं उस पार। दुर्वासा ऋषि बैठे मेडिटेशन कर रहे थे, तो चिल्ला के पूछा, दुर्वासा ऋषि ये यमुना नदी तो बहुत ऊपर तक चढ़ी हुई है, कैसे आए उस पार। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा सरल सा उपाय है, मन में चिंतन करो कृष्ण का और बोलो हे यमुना मैया, बोलिए आप लोग भी, हे यमुना मैया अगर कृष्ण ने किसी भी लड़की को छुआ ना हो तो आप हमें रास्ता प्रदान करिए। अभी सही है हाँ गलत है, सही है गलत है, हाँ या ना, गलत है, मतलब ऐसा छुआ है उन्होंने तो सबको, है ना। तो क्या होना चाहिए था, हटना चाहिए था कि नहीं, यमुना को नहीं हटना चाहिए, आप कह रहे हो गलत है तो नहीं हटेंगे। अभी अगर गलत है ये स्टेटमेंट तो हटना नहीं चाहिए। तुरंत देखते देखते क्या हुआ, यमुना ने पूरा रास्ता बना दिया सारी गोपियों के जाने के लिए। हाँ सब हैरान थे, ये कैसा स्टेटमेंट था, कृष्ण तो रोज हमारे साथ रास क्रीड़ा करते हैं, कैसा हो गया कि कृष्ण ने कभी छुआ नहीं। तो ये बात, ये लीला स्थापित करती है कि कृष्ण जगर छूते भी हैं तो इसलिए छूते हैं क्योंकि वो परमात्मा के रूप में छूते हैं, हर स्त्री के हृदय में बैठे हैं। कोई ये नहीं कह सकता ये पत्नी मेरी है, वो सबकी सब भगवान की हैं। वो तो सिर्फ 16108 को स्टैंप किए कि इनसे मैंने विवाह किया है, अगर देखा जाए तो इस संसार की हर एक जीवात्मा भगवान की पत्नी है और सबके पति हैं, जगत पति, क्योंकि पालन करने वाले हैं कृष्ण, तो हम सब पत्नियां हैं उनकी, तो सब छूते हैं भगवान सबको परमात्मा रूप में। लेकिन वो हट गया क्योंकि रास क्रीड़ा में लेश मात्र भी काम वासना का क्या है, एंट्रेंस नहीं है, इसलिए वो हट गई यमुना। और फिर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को कहा लीजिए मुनिवर ग्रहण करिए, किसी ने लड्डू दिया, किसी ने खीर खिलाई, सब खाने के बाद में दुर्वासा ऋषि ने कहा धन्यवाद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं हे राधा रानी कि तुम कृपा प्राप्त करोगी मेरी, और जब भी तुम कुकिंग करोगी तभी कृष्ण खाएंगे, चाहे यशोदा मैया भी बनाए लेकिन वो तभी खाएंगे जब तुम कुकिंग करोगी। इसलिए यशोदा मैया स्पेशली राधा रानी को इनवाइट करती है कि आइए कुकिंग करिए ताकि कृष्ण खा सके, और रोज बरसाना से आती थी राधा रानी कुकिंग करने के लिए, सोचिए आप। तो जब दुर्वासा ऋषि ने प्रसाद ग्रहण कर लिया तो उन्होंने मन में सोचा सारी गोपियों ने, बनते हैं बड़े ऋषि, डपा डप खपा खप खाए चले जा रहे, लड्डू पेड़ा खीर सारे उड़ेल दिए, इतना सा भी महाप्रसाद नहीं छोड़ा, इन्हें कहते हैं बड़े वाड़े दुर्वासा ऋषि, मन में चल रहा है उनके, ऋषि तो समझ गए। तो सारी गोपियां गई यमुना किनारे, वापस जाना था अपने अपने घर, देखा यमुना नदी फिर से लबालब पानी से भरी हुई है, कैसे जाऊं उस पार। फिर वापिस दौड़ के दुर्वासा ऋषि से कहा ऋषिवर फिर से बताइए कोई मंत्र कि हम उस पार चले जाएं। कहा देखो सब लोग बोलो, क्या बोलो आप साथ में बोलिए, हे यमुना नदी, बोलिए हे यमुना नदी कृपया कर हमें रास्ता प्रदान कीजिए, अगर दुर्वासा ऋषि ने हमारे द्वारा बनाया गया प्रसाद में से एक कण भी ना पाया हो। सही है गलत है, गलत है, खाया उन्होंने तो भर भर के खाया, ऐसे तो भक्त भी खाते हैं दबा दब खाते हैं खूब सारे, खाया उन्होंने खूब, फिर क्या हुआ, यमुना नदी हटी नहीं हटी, फिर से रास्ता बन गया, फिर सारी की सारी गोपियां चलेंगी। पर हैरान थे, ये सीखने वाली बात है कि भक्त जो होते हैं वो प्रेम के लिए पाते हैं, ऐसे ही कृष्ण के सामने हम सब कुछ रखते हैं, कृष्ण उसमें से सब कुछ खा लेते हैं लेकिन एक कण भी नहीं खाते हैं, क्योंकि लिप्तता ही भोगता है, जितना ज्यादा उसमें लिप्त होंगे उतना ज्यादा भोग का फल मिलेगा, जितना ज्यादा निर्लिप्त होंगे उतना ज्यादा भोग का फल नहीं मिलेगा, लिप्तता नहीं होनी चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं राइस प्रसाद, चावल प्रसाद, तो शुरुआत जब होती है भोग की महाप्रसाद गोविंद के बाद, तो भक्त भी कह रहे थे हरि बोल प्रभु जी प्रसाद, वो वाला सूजी हलवा प्रसाद, राइस प्रसाद। और जब प्लेट बहुत देर तक खाली रहती है और घूमकर लाइन नहीं आती है तो भक्त उद्विग्न हो जाता है और चिल्लाने लगता है ए ए चावल चावल, प्रसाद भी गया हरि बोल भी गया। तो ये बता रहा है कि वो व्यक्ति चावल में लिप्त है। हमने अपने मंदिर में द्वारका में ऐसा नियम बनाया था, कोई कितना भी चिल्लाए अगर वो प्रसाद नहीं बोलेगा पीछे तो उसको नहीं देंगे। नया भी भक्त हो तो बेचारा बोलता रहता था हे हरि बोल हरि बोल, हे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु, कितना भी चिल्लाता रहे हम बोलेंगे नहीं, बोलो गुरुप्रभु जी बोलो हलवा नहीं हलवा प्रसाद, तो बोलता था हलवा प्रसाद तो जल्दी तो भूख लगे। तो प्रसाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिप्तता ही भोगता है। अगर हम प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करेंगे चाहे कितना भी ग्रहण करें तो उसका एक कण भी फल नहीं देगा, उसमें आपको भोग नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। लेकिन प्रसाद की जैसे चेतना चली गई आपके मन से, बस सोचने लगे वाह माता जी क्या मलाई कोफ्ता बनाया है, वाह मजा आ गया आज कार्तिक मास में फेस्टिवल हो गया, तो बस फिर उसका भोग भोगना पड़ेगा। वो कर्म बंधन है, और जिस पल प्रसाद की चेतना गई वो कर्म बंधन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। यही दुर्वासा ऋषि ने शिक्षा दी कि मैंने खाया सब कुछ लेकिन इसका कण मात्र भी ये नहीं सोचा कि मैंने भोग किया है, मैंने तो प्रसाद ग्रहण किया है। तो ये खाइए पर प्रसाद के रूप में अगर खा सकते हैं, चेतना को बरकरार रखिए। इसीलिए भक्त कथा सुनते हैं प्रसाद के टाइम पे, कीर्तन करते हैं या फिर चर्चा करते हैं तो कृष्ण भावना भवित चर्चा करते हैं। ये रोज का कार्यक्रम होना चाहिए गृहस्थ जीवन में। तो इस तरह से राधा रानी आई थी नंदगांव में प्रसाद बनाने के लिए, और कृष्ण की जो माता है यशोदा ने सोचा राधा रानी के घर पे वो आई हैं तो कुछ गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि जटिला कुटिला बड़ी जटिल कुटिल है, वापिस जाएगी खाली हाथ ना तो बेचारी को बड़ा सताएंगे। आ गई मिलकर अपने प्रेमी से, बनाए खाना तुझे तो काम वाली समझ रखा है, ऐसे बोलेंगे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने बड़ी ही साधारण रूप से कहा मैं तुम्हारे लिए एक गहनों का बक्सा देना चाहती हूँ। तो एक बक्सा निकाला, अंदर से छोटा लोहे का बक्सा होता था ना पहले, पेटी, उस पेटी को पूरा आभूषणों से भर दिया और उसमें ताला डालकर एक भगवान कृष्ण के सखा को बुलाया और कहा सुबल ये देखो ये पेटी राधा रानी की सखियों को दे दो और उनको कहो ये जटिला कुटिला को जाकर दे दे, क्योंकि इसमें क्या है आभूषण है, ताकि राधा को डांट ना पड़े। इस तरह से बोल दिया। कुछ समय बाद कृष्ण को जब पता चला, सुबल ने कहा लो जी आपके यहां बक्सा जा रहा है, आपके यहां मतलब राधा रानी के यहां, आपके यहां बक्सा जा रहा है उसमें आभूषण भरे पड़े हैं। तो कृष्ण ने कहा अच्छा आभूषण, ये तो अच्छा उत्तम स्थान है राधा रानी के साथ लीला करने का। तो इस कार्तिक मास में उन्होंने एक लीला करी, क्या किया कि कृष्ण ने रस्ते में ही सखियों को कुछ पैसे खिला दिए रिश्वत। और कृष्ण की बातों में तो पूरा संसार फंस जाता है ना, इसीलिए उनका नाम है सर्व आकर्षण करती इति कृष्ण, सबको आकर्षण करने वाले कृष्ण हैं। कुछ बोला प्रेम की बोली तो मैं भी उसी की होली, वो गोपियां सारी उन्हीं की हो गई, उनके साथ मिल गई। और ललिता ने कहा क्या चाहिए, बोले बस एक काम करो सारे आभूषणों को भर दो बैग में और किसको दे दो, कुंदन लता को दे दो अपनी सखी को, ये लेकर के पहुंच जाएगी और इस बक्से में मुझे डाल दो। और कृष्ण उस बक्से में लॉक हो गए और लॉक होकर के पहुंच गया वो बक्सा कहां, जटिला कुटिला के पास में। अभी ताला पड़ा है, उसमें चाबी भी दी है यशोदा मैया ने और बड़े ही प्रेम से भेंट पहुंचाई है। और जटिला कुटिला ने उठाया तो कहा बहुत भारी है, क्या कंकड़ भर के दे दिए इसमें यशोदा ने, नहीं नहीं इसमें तो आभूषण है, सखियों ने कहा। कुंदन लता बोली कि देखिए मैंने तो आंगन में रख दिया है, पहले घर ऐसे होते थे कि बीच में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे, कहा मैंने बीच में रख दिया है, अब आप देखिए जिसको अपने अपने कमरे में लेना है आभूषण ले लो। तो उनकी ननद बोलती है कि ताला तोड़ो और सब अपना अपना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ले लो, पहले हम लेंगी फिर बाद में राधा रानी ले लेगी। लेकिन फिर उनकी सास के मन में आया बड़ा भारी है, खींच कर ले जाना पड़ेगा कमरे में, एक काम करो राधा रानी को कहो वही खींच कर अपने कमरे में ले जाए और ताला खोलने के बाद में आभूषणों को हमें दे जाए। हाँ ठीक है, राधा रानी की सखियां और राधा रानी खींच खींच के अ अ कर करके पूरा कमरे के अंदर ले गई और अब ताला खोलने की बारी आई। तो सारी सखियां बैठी थी और राधा रानी ने भी अपने ऊपर की चुन्नी और जो दुपट्टा सब हटाकर अलंकार पहनने के लिए जैसे ही अपने गले को खाली किया और ताला खोला और जैसे ही बक्सा खुला तो उसमें से कौन निकले, वो बोलते हरि बोल। कौन निकले? कृष्णा। कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण निकल आए और निकलते ही राधा रानी घबरा गई, क्या करूं मैं, ये सामने से कृष्ण निकल आए, अभी तो वस्त्र भी पूरे नहीं पहने, सखियां भी देख रही हैं। और उन्होंने तुरंत ही क्या किया, एक दुपट्टा लेकर के कृष्ण का आलिंगन कर लिया। कृष्ण बोले इस आलिंगन के लिए तो इस बक्से के सारे आभूषण तुम्हें पूरा जीवन नछावर कर सकता हूं। ये कृष्ण को राधा रानी का प्रेम जो है वो स्थापित करता है कि कितना प्रेम है, कि कृष्ण कह रहे हैं संसार का कोई भी आभूषण इस आलिंगन इस प्रेम को प्रदान नहीं कर सकता। और तुरंत सखियों ने आकर के कहा, अभी राधा रानी घबरा गई, कृष्ण बक्से में तुम हो तो आभूषण कहाँ गए, अभी जटिला कुटिला मांगेंगी तो मैं क्या दूंगी, कुंदन लता पहले ही बता चुकी है कि इसके अंदर आभूषण है। तभी थोड़ी देर बाद कुंदन लता अपना वो लेके आई, क्या बोरा, और उस बोरे के अंदर पूरे आभूषण भरे हुए थे और तुरंत उन आभूषणों को जटिला कुटिला को प्रदान किया गया। तो सखियों ने पूछा, हे राधे, यशोदा मैया ने इतने प्रेम से आभूषण भेजे हैं, तुमको क्या कोई भी अलंकार नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए? तो यशोदा मैया ने जो प्रेम से भेजे हैं उन्होंने कहा, उन सारे आभूषणों में से जो उन्होंने आभूषणों का मुकुट मणि भेजा है ना, ये कृष्ण, मुझे तो बस यही अलंकार चाहिए। और फिर दोबारा से उनको अपने गले में धारण कर लिया, मतलब आलिंगन कर लिया उनका। तो ये कृष्ण जो प्रेम है ये कब प्राप्त होता है, जब आपने दिया तो दिया लेकिन दिया के साथ में जिया भी दिया, क्योंकि राधा रानी ने अपना जिया दिया है। रहती है ससुराल में लेकिन सारा दिन क्या बोलती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आपसे आशा है कि आप लोग भी अपना दिया तो देंगे लेकिन साथ में जिया भी देंगे। कल से भीष्म पंचक शुरू हो रहा है, तो जो भक्त भीष्म पंचक रखना चाहते हैं वो अभी इस बार तो डिस्काउंट दिया है भगवान ने, डिस्काउंट में डिस्काउंट, कार्तिक का डिस्काउंट, ऊपर से 4 दिन का डिस्काउंट, 5 दिन का भीष्म पंचक होता है उसे 4 दिन में ही पूर्ण कर दिया है। और इन 5 दिनों में एकादशी से प्रारंभ करके पूर्णमासी जो 14 नवंबर को है उस दिन समाप्त होगा। शाम को 7 बजे के बाद अपना व्रत तोड़ सकते हैं, तब तक आप लोग व्रत धारण कर सकते हैं कि हम एकादशी को ही ग्रहण करेंगे। इसके कई नियम हैं। पहला नियम कहता है कि पंचगव्य से 5 दिन रहना चाहिए, 5 गाय के प्रोडक्ट्स, 1 दिन गोबर, 1 दिन दूध, 1 दिन दही, 1 दिन घी, 1 दिन गौमूत्र। तो इससे बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि भक्त सेवा करते हैं, जप करते हैं, प्रचार करते हैं, लोग जॉब पे जाते हैं, गृहस्थ जीवन में है, काम करते हैं, माता है। दूसरा है कि हम रोज दूध पीकर 5 दिन गुजारें, रोज दूध पिए, खाली मिल्क प्रोडक्ट नहीं, खाली मिल्क। तीसरा लेवल होता है कि हम दूध के साथ में मूल भी लें, दूध और मूल मतलब जड़ मूल, मतलब फ्रूट्स और सब्जियां, फ्रूट्स ले सकते हैं। तीसरा होता है कि हम फ्रूट को सुखा करके ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। इस तरह से सीढ़ियां नीचे गिर रही हैं। और फिर आखिरी सीढ़ी है कि हम प्रसाद ले पूरा एकादशी की तरह और 5 दिन गुजारे। तो इस तरह से आप रख सकते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह ने क्या किया था, 5 दिनों तक अपने शरीर को छोड़ने से पहले भगवान के लिए तपस्या करी थी और कहा था कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, बस मेरे सांवरे मेरे साथ में हो। हम भी यही कहते हैं, प्रभुपाद जी ने भी यही किया। और प्रभुपाद जी भी जवंत समय में अपना शरीर त्याग रहे थे तो उनका सांवरा उनके निकट था, कृष्ण उनका नाम उनके पास था, सभी भक्त कीर्तन कर रहे थे। तो हम भी चाहते हैं कि कभी ऐसी स्थिति हो कि जब हमें कृष्ण प्राप्त हो, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, अंत समय में कृष्ण प्राप्त हो, जीवित अवस्था में कृष्ण प्राप्त हो, तो उस व्यक्ति को भीष्म पितामह के इस व्रत को रखना चाहिए। इस व्रत में एक और फायदा है, अगर कार्तिक में कोई भी व्रत टूट गया हो, कोई नियम आपने लिया हो टूट गया हो, तो इन 4 दिनों में पालन करने से आपको पूर्ण कार्तिक का फल भी प्राप्त हो सकता है। ये शक्ति है इन 4 दिनों की। तो आप देख सकते हैं कि आप किस लेवल का इस व्रत करना चाहते हैं, इस लेवल के व्रत को करिए, दीपदान करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हम अगले साल के कार्तिक तक जीवित अवस्था में रहें और फिर और दृढ़ता से इस कार्तिक को रखेंगे। हरे कृष्णा।